मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, वर्ष 2019 के अप्रैल महीने का आज आखिरी दिन है। अप्रैल आज खत्म हो जाएगा और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं असलम आलम, आपका गांव है सांवल, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़, सुजीत कुमार बेदिया रांची झारखंड से, प्रभाकर पांडे आपका गांव है रघुनाथपुर जिला चंदौली उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार यादव आप हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से और शिव सागर फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, स्वागत के की इस फॉर्मेलिटी के बाद अब मैं आपसे थोड़ा सा मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूंगा। कल हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बातें कर रहे थे और चूंकि अब हमारे लिए सबसे बड़ा जो केंद्रीय मुद्दा हो गया है या कह लीजिए कि जो विषय हो गया है वो प्रारंभिक परीक्षा हो गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। हालांकि कुछ थोड़ी सी जानकारी मैंने दी थी, लेकिन इससे पहले आइए मैं दो सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाएं मुझे मालूम पड़ रही हैं आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से उनकी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपको अब बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। ये न्यूज 2 दिन पहले की है और उस समय मैंने इसकी चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि उस घटना की चर्चा मैं कुछ दिनों पहले कर चुका था और काफी विस्तार से कर चुका था। बहुत ही सरल रूप में मैं कहना चाहूं तो कुल मिलाकर के यह है दोस्तों कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर से कुछ सूचनाएं मांगी गई थी और रिजर्व बैंक ने वो सूचनाएं उस सूचना के अधिकार के तहत उसको देने से कुछ आधारों को लेकर के मना कर दिया था कि नहीं, हमारे और बैंकों के बीच में कुछ इस तरह का समझौता है कि इस तरह की सूचनाएं नहीं दी जा सकती। कॉम्प्लिकेटेड मामला न हो, मैंने इसीलिए यहां से विषय को हटा दिया है। देखिए, किसी चीज को समझने के लिए जब हम बहुत सरल सा स्केच बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आती है, इसके बाद जब उसमें माइनर डिटेल्स भरने लगते हैं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मैं यहां आपको एक बहुत ही मोटी आउटलाइन के तहत इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। सूचना मांगी गई रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो सूचना देने से मना कर दिया किसी नियम का हवाला देते हुए। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको ये सूचना देनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से वो सूचना देने से मना कर दिया, नहीं दिया, और उसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को एक तरह से यूं कह लीजिए कि खरी खोटी सुनाई। उसी को आधार बना करके ये एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हो सकता है कि आरबीआई के संबंध में सीधे सीधे प्रश्न न पूछा जाए कि क्या घटना घटी थी और आरबीआई ने क्यों देने से मना किया, लेकिन यह एक इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है तथ्य के रूप में कि सूचना के अधिकार में आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे एग्जामिनर को यह लगेगा कि नहीं, आप अपने समय के प्रति बहुत ही सतर्क हैं। राइट दोस्तों, अब मैं दूसरी घटना पर चर्चा कर रहा हूं। अखबारों में जिसे बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिला है और वो ये कि आपको मालूम है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड को लेकर के बीजिंग में एक सम्मेलन हुआ है जिसमें लगभग 33 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भारत ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। 2017 में भी जब इस तरह का सम्मेलन हुआ रहा था तो भारत नहीं गया था क्योंकि वह इसे संप्रभुता में पर हस्तक्षेप के रूप में लेता है और इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से बात कर चुका हूं। अब जबकि वह सम्मेलन खत्म हो गया है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके कंक्लूजन को जाने कि क्या हुआ, क्योंकि हमारे लिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे बीआरआई के नाम से जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो चाइना का मामला है, हमारा पड़ोसी देश है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह लीजिए कि आर्थिक जगत का हमारा प्रतिस्पर्धी देश भी है, कुछ मामलों को लेकर के तनाव भी हमारे साथ बकायदे बने रहते हैं, और फिर ये जो मामला है ये सीधे हमारी संप्रभुता पर हस्तक्षेप है और चीन और पाकिस्तान के बहुत नजदीक आने का एक प्रमाण भी है, तो भारत के लिए चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है और इसीलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी यदि उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो जरा भी अस्वाभाविक नहीं है। अब आप देखिए कि मैं अब आपको एक प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इसी पर आधारित है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस का जो थर्ड पेपर होता है उसमें पूछा गया है, और वह भी लेटेस्ट है 2018 के एग्जाम में, और इस पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातें की थी। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान बहुत जरूरी है। इस शेड क्या है, प्रश्न का कलर और उसके जो छवियां हैं वो क्या है, अगर इस टॉपिक पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका झुकाव किस तरीके का है। जब तक आप उन झुकावों को नहीं पकड़ेंगे तब तक सही मायने में आप उस प्रश्न के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। देखिए कितने सीधे तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल एक पट्टी एक सड़क पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया। सीपीईसी का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइए। अब आप देखिए कि केवल 150 शब्दों में लिखना है और ये कितना सरल प्रश्न है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। लेकिन होता क्या है कि अगर हमने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट वाइज दिमाग में बहुत क्लियरली तैयारी नहीं की है तो फिर हम उलझ जाएंगे, और जैसे उलझ करके हम कुछ भी लिखेंगे एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेता है कि इस बारे में आपकी जो दृष्टि है वो बहुत साफ नहीं है। तो दोस्तों, अभी जो सम्मेलन हुआ है, समाप्त हुआ है, उसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस ने कल के एक बहुत खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट लिखा, बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा, और मैं इसका हिंदी वर्जन भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसके दो पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में यह बताया गया इस एडिटोरियल कमेंट में कि इस बार जो सम्मेलन हुआ है तो पहली बार लोग देश जो उसमें आए हुए थे उन लोगों ने चाइना के इस कोशिश के बारे में कुछ प्रश्न खड़े किए। भारत तो लगातार प्रश्न खड़ा करता ही रहा है, भारत तो सम्मेलन में जाता ही नहीं है, तो पहली बार उन्होंने सम्मिलित रूप से आवाज उठाई है। और आवाज के तहत उन्होंने क्या किया है, मतलब आवाज उठाने वाले देशों में, मतलब भारत तो पहले से रहा ही है, जापान है, पूरे के पूरे यूरोप के देश हैं, यहां तक कि अमेरिका भी है, इन सब ने आवाज उठाई है। और उन्होंने कहा है कि ये जो चीन का की जो योजना है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसके माध्यम से वो इन क्षेत्रों में अपनी भौगोलिक और राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित करना चाह रहा है। मतलब उसकी नीयत पर सीधे सीधे संदेह किया गया है। चीन ये कह रहा है कि नहीं, इसके माध्यम से हम एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ देंगे और इससे व्यापार बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, लेकिन ये केवल यही नहीं है। तो पहली तो उसके जो उसका जो इंटेंशन है उसको क्लियरली वॉइस दी गई, उसको आवाज दिया गया। इसके बाद कुछ और भी आलोचनाएं की गई कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहला तो यह है कि आप जिन देशों में बना रहे हैं सड़कें और बंदरगाह और एयरपोर्ट, पता लगा कि वो बुरी तरह से बाद में कर्ज में डूब जाते हैं। आप देखिए श्रीलंका वगैरह का यही हाल है, वो कर्ज में डूब जाते हैं। आप जो पर्यावरण है उसको दुनिया भर का नुकसान पहुंचा है इसकी जगह, इस पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप जो दूसरे देशों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें पारदर्शिता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ का उसमें जगह जगह पर उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उन्होंने अपनी बात कही। और इसके बाद सम्मेलन के अंत में जो जारी किया गया है, जो चीन ने अपनी बात कही है, उसमें साफ तौर पर इन चीजों के जवाब देते हुए उसने विश्व समुदाय को एश्योर किया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां के जो लोकल लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, इंटरनेशनल लॉ का पालन किया जाएगा, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, फाइनेंसिंग एजेंसीज, उनसे भी पैसा लिया जाएगा। इस तरह की बातें उसने कही है, तो कम से कम उसने दुनिया को एश्योर तो किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट है मित्रों। आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो आप इसे जरूर पढ़ें, अपने पास रखें, और हिंदी में इसका वर्जन में डेफिनेटली आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी तो सच पूछे तो अगर आप डेली ऑडियो लेक्चर एक साल से सुन रहे हैं, डेढ़ साल से सुन रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि कंटिन्यूअस पैरेलली आप करंट अफेयर्स की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे आपकी तैयारी पूरी हो जा रही है, लेकिन एक तरह से परत दर परत चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जा रही है। अब होता यह है कि करंट अफेयर्स की तैयारी उन स्टूडेंट्स की सबसे अच्छी होती है और वो सबसे ज्यादा स्कोर भी करते हैं जो क्रमशः लगातार लंबे समय तक इससे जुड़े रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप रोज अखबार पढ़िए, आप रोज न्यूज सुनिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हों, घटनाएं हों, उन्हें आप नोट भी कर लीजिए। जैसा कि मैं बीच बीच में आप सबसे कहता रहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। तो उससे क्या है कि आपके दिमाग में घटनाएं कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जाती हैं, और फिर जब जिस तरह से क्वेश्चंस घुमाने वाले पूछे जाते हैं प्री एग्जामिनेशन में, वो आपको भ्रमित नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया है तो अब उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये मान करके चलिए कि एक बहुत सुनहरा अवसर तो आपने हाथ से जाने दिया है, खो दिया है, अब आप उसे वापस नहीं ला पाते। काश कि आपने ऐसा किया होता। कोई बात नहीं, लेकिन एक संकल्प तो आप ले ही सकते हैं कि अगली बार के एग्जाम के लिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, राइट? अब देखिए कि आपके पास दो तीन विकल्प बचते हैं। पहली बात तो यह है कि इस समय पर जबकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, बहुत से मैगजीन्स अपना वार्षिकांक निकालते हैं, एनुअल वर्जन निकालते हैं, और उसमें करंट अफेयर्स की घटनाओं का विवरण रहता है, मतलब संकलन रहता है। नो डाउट कि इस तरह की जो पत्रिकाएं हैं वो अपेक्षाकृत तो काफी पेजेस की होती हैं, उनमें घटनाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। अब आपके सामने ये जरूर संकट खड़ा होगा कि इसमें से आप किस घटना को महत्वपूर्ण माने, किस घटना को महत्वपूर्ण नहीं माने। मुझे लगता है कि अगर आपकी तैयारी के दो तीन साल हो गए हैं और एक आध साल आप सिविल सर्विस एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, तो अपेक्षाकृत आपके लिए समझना आसान होगा कि कौन सी घटना एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कौन सी घटना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर आपने किया है, तो फिर आपको थोड़ा सा एक और काम करना चाहिए, और वो ये है कि करंट अफेयर्स पर कुछ टेस्ट सीरीज भी आती है। करंट अफेयर्स पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या थ्रस्ट जोर करंट अफेयर्स पर देते हैं, तो वहां से आप करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके कुछ चीजें अपने लिए हासिल कर सकते हैं। तो वहां कुछ करंट अफेयर्स के जो तथ्य हैं वे आपको अब मिल जाएंगे। दोस्तों, चूंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, केवल एक महीने का ही वक्त बचा है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि भले ही आप मैगजीन से ही क्यों न पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें से फिर आप सेलेक्टिव तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक बार पूरी मैगजीन पलटते चले जाइए और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन पर आप निशान लगाते चले जाइए, टिक लगाते चले जाइए। और ये नहीं कि केवल टॉपिक पर टिक लगा दिया, बल्कि उस टॉपिक का कौन सा फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन फैक्ट्स को भी अंडरलाइन कर दीजिए। एक बार जब आप मैगजीन को पढ़ लेंगे तो फिर आप उस मैगजीन को बार बार पढ़िए, दोहराइए, और दोहराते समय आप केवल उन्हीं पर ध्यान दीजिए जिन पर आपने निशान लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें आपकी इसके जरिए कवर हो सकती हैं। और दूसरा दोस्तों, कि कुछ जो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि एफईआईएस ने इस तरह के 250 क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स आपके लिए तैयार किए हैं, जो एफईआईएस की वेबसाइट पर भी हैं, और इससे रिलेटेड एक यूट्यूब पर प्रोग्राम भी है 2019 के करंट अफेयर्स की तैयारी पर। उससे भी आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि काफी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको उपलब्ध करा रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं नीरज सिसोदिया, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और सुयश तिर्की। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।